السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدة عائشة رضي الله عنها، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. الحمد للہ، جیسے کہ ہم عائشہ رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھ رہے ہیں اور کافی ڈیٹیل میں ہماری سب جا رہی ہیں روایت، اور ڈیٹیل میں لینے کا مقصد یہی ہے کہ ہم خواتین کے لیے رول ماڈل صرف یہی ہیں، امہات المومنین اور صحابیات. انہی کے نقش قدم پر ہمیں چلنا ہے، اور انہی کے نقش قدم پر چل کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ خواتین ہیں جو ہمارے لیے رول ماڈلز ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں زندگی گزار چکی ہیں، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں اپنی رضامندی کی سند دی، ان کو رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل یا لقب ملا. لہذا ہمارے لیے انہی کی سیرت میں مشعل راہ ہے. جیسے کہ ہم پڑھ رہے تھے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی خوبیاں، ہم نے آپ کے اخلاق بھی دیکھے، آپ کی عبادات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے رہتے جو آپ کی تربیت ہوئی تھی وہ تربیت بھی ہم نے دیکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مناسب سمجھتے اپنی بیویوں کو ٹوک دیتے اگر انہیں لگتا کہ یہ نامناسب بات ہے. یعنی اس سے ہمیں یہی بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ آپ کو محبت کسی سے چاہے کتنی بھی ہو، لیکن جہاں پر آپ کو یہ لگے کہ یہ غیر مناسب رویہ ہے یا نامناسب بات ہے یا اخلاق کے منافی ہے، یعنی غیر اخلاقی حرکت ہے، تو بہتر ہے کہ وہاں پر ٹوک دیا جائے یا وہاں پر منع کر دیا جائے، اصلاح کر دی جائے، تربیت کر دی جائے، اور یہی سب سے بہترین موقع ہوتا ہے. بعض وقت ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اچھا بعد میں کہیں گے، جیسے بچے ہیں یا کچھ اور لوگ ہیں، کہتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ اچھا مناسب موقع دے کر بات کریں گے، لیکن وہ مناسب موقع کبھی نہیں آتا ہے. لہٰذا جس وقت ہمیں برائی نظر آئے، حکمت اور محبت کے ساتھ اسی وقت اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے. جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی سیرت اتنی تابناک، اتنی تابندہ اور ہمارے لیے ایک روشنی کا مینار ہے، وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ جو دشمنان اسلام تھے جنہوں نے ایک سیاسی مسئلے کو لے کر انہوں نے آپس میں صحابہ کرام کے تعلقات کو اس طرح سے پیش کیا جیسے کہ کوئی وہ لوگ دشمن تھے. ایک رافضی فرقہ اس وقت پیدا ہو گیا تھا، رافضی گروہ، یہ بہت ہی غالی قسم کے لوگ تھے، یعنی بہت ہی کٹر. یہ اپنے آپ کو علی رضی اللہ عنہ کا وفادار بتاتے تھے، جبکہ علی رضی اللہ عنہ کے بھی وفادار نہیں تھے، اور اس بنا پر انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے اس قدر خرافات، اس قدر تکلیف دہ باتیں روایت کی ہیں جن کو سن کر ایک عام شخص بھی یہ اندازہ لگا سکتا ہے یا یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ بالکل جھوٹی باتیں ہیں. تو ایسی بہت ساری باتیں جو ہم کو بخاری اور مسلم کے علاوہ ملتی ہیں، اور جن احادیث کی کتابوں میں یہ باتیں ہیں، بعض تو وہ احادیث ٹھیک ہیں، صحیح کے درجے تک پہنچتی ہیں، لیکن بعض احادیث میں کچھ الفاظ ایکسٹرا لکھے گئے ہیں جو کہ مشتبہ ہیں. تو یہ سب ان لوگوں نے بتائے ہیں جو رافضی لوگ تھے، جو اپنے آپ کو علی رضی اللہ عنہ کا وفادار کہتے تھے، لیکن ایکچولی وہ عائشہ رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلاف زہر اگلتے تھے. تو ہمیں ایسی روایت سے بچنا چاہیے. اور ویسے بھی یہ جو کچھ واقعات بیان کیے گئے ہیں، جیسے ام سلمہ کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے، فاطمہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے، یا پھر زینب بنت جحش کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی یا ان کے ساتھ سخت کلامی ہوئی، یا عائشہ رضی اللہ عنہ اور سلمہ رضی اللہ عنہ اندھیرے میں تھیں، اللہ کے رسول آئے وہ سمجھے کہ یہ سلمہ عائشہ ہے، اور عائشہ رضی اللہ عنہ ان کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کر رہی تھیں، اور سلمہ ام سلمہ نے دیکھ لیا اور جا کر پھر فاطمہ رضی اللہ عنہ سے شکایت کی، اور پھر فاطمہ دوڑی دوڑی آئیں اللہ کے رسول کے پاس، انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف کچھ بات کی۔ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ صحابیات سے ایسی باتوں کا صدور پاسبل ہی نہیں ہے، وہ لوگ تو بہت ہی اعلیٰ اخلاق کو پہنچی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، انسان ہونے کے ناطے ان سے کچھ نہ کچھ ہو جاتی تھی، خلاف اولا یا خلاف اخلاق باتیں، لیکن وہ ایسی نہیں تھی کہ جس پر پکڑ کی جا سکے، کیونکہ وہ بھی انسان ہی تھے نا، وہ فرشتے تو نہیں تھے۔ تو لہٰذا ایسی کوئی بھی باتیں آتی ہیں تو اس کو ہمیں ایک طرف رکھ دینا چاہیے، اور ایسی تمام کی تمام باتیں ایکچولی غیر مستند ہیں، نان اتھینٹک ہیں، اس کی کوئی دلیل، کوئی اتھینٹسٹی موجود نہیں ہے۔ اور ایک دو واقعہ دراصل جو انس رضی اللہ عنہ سے صحیح مسلم میں ہیں، اس میں بھی ایکچولی دیکھا جائے تو انس رضی اللہ عنہ پردے کی آیت نازل ہونے کے بعد حجروں میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، اور یہ واقعہ جو بیان کیا گیا ہے وہ 5 ہجری کے بعد کا واقعہ ہے، جبکہ پردے کی آیت نازل ہو چکی تھی، اور وہ مسجد نبوی میں موجود تھے، اور مسجد نبوی سے کیا ان کو حجرے کی تمام باتیں سنے آ رہی تھیں، یہ بھی غیر مناسب لگتی ہے بات۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے دل کی بات یہاں بیان کی گئی ہے، تو کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے جو دل میں تھا وہ انس رضی اللہ عنہ کو پتہ چل گیا، تو یہ لہٰذا اگر اس کو تمام پیرائے میں دیکھیں اس حدیث کو، تو لگتا ہے کہ یہ حدیث کچھ اور سوچ کر بیان کی گئی ہے۔ تو بہرحال جو ایسے واقعات ہیں ان کو ہمیں ترک کر دینا چاہیے، اور ہمیں ان کو نہیں لینا چاہیے۔ جیسے کہ جو ابھی واقعہ آپ کو بیان کیا جا رہا تھا کہ ایک دفعہ رات کے وقت عائشہ اور زینب دونوں میں رضی اللہ عنہن، ان دونوں میں سخت کلامی ہوئی، اور انس رضی اللہ عنہ وہاں پر موجود تھے حجرے کے باہر یا مسجد نبوی میں، انہوں نے یہ واقعہ سن لیا اور اس کو بیان کیا، تو اندر سے جو آوازیں آ رہی تھیں کیا وہ اس کو سن رہے تھے؟ پہلی بات تو وہ حجرے کے اندر موجود نہیں تھے، اور دوسری کہ وہاں پر چراغ بھی نہیں تھا، تو وہ بھلا آپ کو کیسے دیکھ سکیں گے کہ کون تھی، عائشہ تھیں یا ام سلمہ رضی اللہ عنہ تھیں؟ اور دوسری بات جو بیان کی گئی ہے کہ وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ ڈر گئیں دل میں، تو یہ بات ان کو کیسے پتہ چلی کہ ان کے والد آئیں گے اور ان کو وارننگ دیں گے؟ تو یہ مناسب نہیں معلوم ہوتی۔ تو بہرحال کچھ ایسی آیتیں ہیں، کچھ ایسی روایت ہیں جو کہ غیر مناسب ہیں، لہٰذا ہم اسے وہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ جبکہ ہم آپ کا رویہ دیکھتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ جب رخصت ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، تو اس وقت فاطمہ رضی اللہ عنہ موجود تھیں، اور فاطمہ رضی اللہ عنہ عمر میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے تقریباً 6 سال یا 5 سال بڑی تھیں، اور تقریباً 2 یا 3 سال رخصتی کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ رہیں، یا 1 سال تو کم از کم ہم مان ہی لیتے ہیں، اور ام کلثوم رضی اللہ عنہ وہ بھی عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی تھیں، یعنی ابھی ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ہمیں کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں ملتا جس میں عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے ساتھ کوئی نامناسب رویہ اختیار کیا ہو، بلکہ ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نکاح اور ولیمے کی تقریب خود عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے، اور اس میں انہوں نے جو تعریف کی ہے کہ ہم نے فاطمہ کے جیسا ولیمہ کسی کا نہیں دیکھا، یعنی اتنا بہترین ولیمہ تھا۔ پھر اور بھی روایت ہمیں ملتی ہیں کہ خود عائشہ رضی اللہ عنہ یہ بتاتی ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے آخری وقت میں، تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ انہوں نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے کان میں کچھ کہا، تو فاطمہ رضی اللہ عنہ وہ سن کر رو پڑیں، پھر اللہ کے رسول نے دوبارہ ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ اس وقت مسکرا دیں۔ جب عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ میرے والد کی راز کی بات ہے، میں نہیں بتا سکتی۔ جب انتقال ہو گیا اللہ کے رسول کا، تب عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک دن فاطمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ وہ کیا بات تھی، اب تو تم بتا سکتی ہو۔ تو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ پہلے والد صاحب نے کان میں بات کہی تھی کہ میں جلد ہی وفات پانے والا ہوں، تو یہ سن کر مجھے رونا آ گیا۔ फिर उन्होंने मुझे कहा कि मेरे बाद सबसे पहले तुम ही मुझसे आकर मिलोगी। तो मुझे हंसी आ गई, यानी मैं मुस्कुराने लगी। तो आप देखिए कि कितने अच्छे ताल्लुकात थे। अगर अच्छे ताल्लुकात ना होते तो क्या फातिमा रज़ी अल्लाह उनको अपनी ये इतनी अहम बात बताती थी? तो इससे क्या पता चलता है कि दोनों के ताल्लुकात बहुत ही बेहतरीन थे। कहा जाता है कि जब फातिमा रज़ी अल्लाह रुख्सत होकर जाने लगी तो उनका जो कमरा था, उनका जो घर था, तो बाज़ रिवायत से पता चलता है कि उनके घर को खुद आयशा रज़ी अल्लाह ने तैयार किया, यानी सफाई की, बिस्तर लगाया और छुहारे और मुनक्का दावत में पेश किए। ये रिवायत इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि ये बताने के लिए कि आयशा रज़ी अल्लाह ने खुद तैयारी की थी अपने हाथों से। जहाँ दूसरी अजवाज फातिमा रज़ी अल्लाह ने की निकाह की तैयारियाँ कर रहे थे, उसमें आयशा रज़ी अल्लाह भी शामिल थी। तो जिस घर में फातिमा रज़ी अल्लाह रुख्सत होकर गई, वो सिर्फ एक दीवार बीच में थी और आपस में उनकी गुफ्तगू होती थी, कभी उसमें सख्त कलामी नहीं हुई। तो सही हदीस की किताबों में कोई ऐसा वाकया हमें नहीं मिलता है जिससे ये साबित हो सके कि इन दोनों माँ बेटी के ताल्लुकात कभी ख़राब हुए हों या कशीदा हुए हों, बल्कि हदीस से यही बात पता चलती है कि दोनों में यकजहती थी, मोहब्बत थी, मेल मिलाप था। जब फातिमा रज़ी अल्लाह अल्लाह के रसूल के पास आई थी दरख्वास्त लेकर कि मुझे एक गुलाम की ज़रूरत है या लौंडी की ज़रूरत है, तो उन्होंने आयशा रज़ी अल्लाह के ज़रिए से ही कहलवाई थी ये बात। एक दफ़ा फातिमा रज़ी अल्लाह को तमाम अजवाज ने अपना सफ़ीर बनाकर भेजा कि तुम जाकर अल्लाह के रसूल से कहो कि ऐसा क्यों होता है कि जिस दिन आयशा रज़ी अल्लाह की बारी होती है उसी दिन सब आपको तोहफा भेजते हैं, तो लोगों से कहा जाए कि उस दिन भी तोहफा भेजें जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी अजवाज के साथ होते हैं। तो ये बात अजवाज मुतहरात आपसे कहने के लिए डर रही थी, तो उन्होंने फातिमा रज़ी अल्लाह को सफ़ीर बनाकर भेजा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में कहा कि बेटी जिसको मैं चाहूँ उसको तुम नहीं चाहोगी। तो फौरन वो शर्मा कर वापस चली आईं, और फिर उन लोगों ने दोबारा भेजने भी चाहा तो वो वापस नहीं आईं, यानी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा। इस सही बुखारी की रिवायत है। खुद आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में कि मैंने फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से उनके बाप के सिवा कोई और बेहतर इंसान कभी नहीं देखा। सुभान अल्लाह, आप देखें, तिबरानी की रिवायत है और सही है। एक ताबई ने हजरत आयशा रज़ी अल्लाह से पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा महबूब कौन था? बोली फातिमा। कहती कि मैंने फातिमा से ज्यादा नशिस्त बरखास्त के तौर तरीके में, यानी उठने बैठने के अंदाज में, अल्लाह के रसूल से मिलता जुलता किसी और को नहीं देखा। जब वो आपकी खिदमत में आती तो आप खड़े हो जाते, पेशानी चूम लेते और अपनी जगह पर बिठाते। इसी तरह जब आप उनके घर तशरीफ ले जाते तो वो भी खड़ी हो जाती, वालिद को बोसा देती, यानी अपने फादर को, अल्लाह के रसूल को, और अपनी जगह पर बिठाती। ये तिरमिज़ी की है हदीस। फिर वो बात जिसमें यह हमें जिक्र मिलता है कि फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा और आपके ख़ानदान के तमाम लोग, यानी अली और आपके बच्चे, ये सब अहले बैत में से है। तो इस हदीस को खुद आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा रिवायत करती हैं। इससे बढ़कर उनके उनकी खैर ख्वाही का सबूत क्या हो सकता है, आप बताएं? यानी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ही वो हदीस बयान करती हैं जिसमें ये जिक्र किया गया है कि फातिमा, अली और उनके बच्चे रज़ी अल्लाह अन्हुम, ये सब अहले बैत में से है, जिसमें अल्लाह के रसूल ने एक दफ़ा उनको एक चादर में ले लिया था। अगर आप लोगों ने तफसीर पढ़ी हो तो आपको याद होगा आयत मुबाहिला जब नाजिल हुई थी सूरह आले इमरान की, जब वफद नजरान आया था, क्रिश्चियंस का एक बड़ा ग्रुप अल्लाह के रसूल की खिदमत में आया था, उन लोगों ने इस्लाम नहीं कबूल किया था, तब अल्लाह के रसूल ने उनसे मुबाहिला करने के लिए कहा था कि आओ हम और तुम मिलकर दोनों एक दूसरे के खिलाफ बद्दुआ करें, जो हक पर हो वो उसके लिए अल्लाह ताला रहमत नाजिल करे और जो ना हक हो उस पर अल्लाह ताला की लानत हो या जो भी हो, यानी एक बद्दुआ थी समझे वो। तो क्रिश्चियंस उससे डर गए थे। उस वक्त अल्लाह के रसूल ने फातिमा, अली और बच्चों को रज़ी अल्लाह अन्हुम को बुला लिया और अपनी एक चादर डालकर उनको अपने चादर के अंदर ले लिया और कहा कि ये अहले बैत में से है। तो ये वाली हदीस को बयान करने वाली आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा है। तो आप मुझे बताइए कि अगर अल्लाह ना करे आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के दिल में ज़रा सा भी अली और फातिमा रदी अल्लाह अन्हुम के ख़िलाफ़ कुछ होता तो वो ये हदीस ही बयान ना करती। इससे पता चलता है कि उन लोगों के दिल आपस में बहुत साफ थे, एक दूसरे के ख़िलाफ़ उनके दिल में कोई कुछ भी नहीं था। हम वो लफ्ज़ भी इस्तेमाल करना नहीं चाहते। एक और वाक्य हमको मिलता है कि उसी हदीस को एक रिवायत में इस तरह से बयान किया जाता है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे जिक्र किया कि वो रोने लगी और फिर हंसने लगी, तो इसकी दूसरी रिवायत हमें ये मिलती है जिसमें आयशा रज़ी अल्लाह कहती है कि जब अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो गया तो तब मैंने फातिमा से पूछा कि मेरा जो तुम पर हक है उसका वास्ता देती हूँ, उस दिन की बात मुझसे कह दो। तो फातिमा रज़ी अल्लाह ने कहा कि ठीक है, अब मुमकिन है। मेरे रोने का सबब यह था कि आपने अपनी जल्द वफात की इत्तला दी थी, और हंसने का बास ये था कि आपने फरमाया कि फातिमा, क्या तुमको ये पसंद नहीं कि तुम दुनिया की तमाम औरतों की सरदार बनो। ये सही बुखारी की हदीस है और यही ज़्यादा ऑथेंटिक है। जैसे कि हमारे यहाँ पर बहुत सारी जो सीरत की किताबें हैं उसमें बग़ैर किसी हवाले और बग़ैर किसी ऑथेंटिसिटी के बहुत सारे वाक़ दर्ज कर दिए गए हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये वाक़ भी हमारे यहाँ बहुत मशहूर है कि फिदक की जो ज़मीन थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद फ़ातिमा रदी अल्लाह अन्हा और अली रदी अल्लाह अन्हों ने उस ज़मीन का मुतालबा किया कि मीरास में उनको मिलनी चाहिए। तो एक्चुअली अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह अन्हों वाहिद शख्स थे जिनको ये हदीस मालूम थी कि अम्बिया अपनी ज़मीन नहीं छोड़ते, उनका इन्हें दरहम और दीनार नहीं छोड़ते, बल्कि उलमा उनके इल्म के वारिस होते हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि अम्बिया जो भी छोड़ें वो वारिसों का तरका नहीं है, यानी वो उम्मत मुस्लिमा के बैतुल माल में चला जाएगा सारा जो भी ज़मीन होगी। तो इस बिना पर अली रदी अल्लाह अन्हु को और फातिमा रदी अल्लाह अन्हु को ये बात बता दी गई तो वो लोग इस बात पर राजी हो गए थे, लेकिन कुछ लोगों ने उसको इतना नमक मिर्च लगाकर पेश किया। और वो लोग ये भी नहीं सोचते कि जब हम ये वाक़ बयान कर रहे हैं इससे खुद जिनके फेवर में वो वाक़ बयान कर रहे हैं उनकी तस्वीर किस तरह से बिगड़ रही है। यानी अगर कोई ये कहे कि फातिमा और अली रदी अल्लाह अन्हुम ज़मीन के लिए लड़ रहे थे, अपना हिस्सा मांग रहे थे, और वो हिस्सा मांगने की वजह से उन्होंने अबू बकर सिद्दीक के हाथों पर बैत भी नहीं की, बल्कि वो हिस्सा मांगने के लिए उन्होंने अबू बकर सिद्दीक और आयशा रदी अल्लाह अन्हा से क़त्अ ताल्लुक़ कर लिया, तो आप देखिए कि किसकी तस्वीर यहाँ ख़राब हो रही है ना, अली रदी अल्लाह अन्हा और फातिमा रदी अल्लाह अन्हा की ना। तो ये तो खुद यानी कितनी गलत बात होगी। क्या हम तस्वुर कर सकते हैं कि अली रदी अल्लाह अन्हा इस कदर माशाल्लाह जिन्होंने अल्लाह के रसूल के हाथों तरबियत पाई कि वो एक छोटी सी ज़मीन के लिए किसी से ताल्लुकात ख़राब कर सकते हैं भला? और फातिमा रदी अल्लाह अन्हा जिनको जन्नत की सरदार होने की बशारत दी गई कि वो ज़मीन के लिए अपनी वालदा से क़त्अ ताल्लुक़ कर सकती हैं आयशा रदी अल्लाह अन्हा से, जबकि सही रिवायत से बात हमें पता चलती है कि अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु जब फातिमा रदी अल्लाह अन्हा बीमार हुईं तो उनकी अयादत के लिए अबू बकर सिद्दीक तशरीफ़ लाए। जब उन्होंने अंदर आने की इजाज़त चाही तो फातिमा रदी अल्लाह अन्हा ने अली रदी अल्लाह अन्हा की तरफ़ देखा, इन्हें इजाज़त चाही अपने शौहर से, तो अली रदी अल्लाह अन्हा ने इजाज़त दे दी तो वो अंदर आए। उन्होंने उनकी अयादत की, जाहिर सी बातें पर्दे की में ही होंगी, लेकिन वो अंदर आए, उनसे बातचीत हुई और उसके बाद फातिमा रदी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हुआ। इससे क्या पता चलता है कि दोनों के ताल्लुकात कितने बेहतर थे। लोगों ने ज़बरदस्ती उसको मिर्च मसाला लगाकर ये वाक़ियत को पेश किया है जो कि सहाबा इकराम की तस्वीर को ख़राब करना होगा, तो लिहाजा हमें ऐसे वाक़ियात पर यकीन नहीं करना चाहिए। अब आज हम देखते हैं कि आज हम दो अहम वाक़ियात डिस्कस करेंगे, वाक़ इफ्क और तयम्मुम की जो आयत नाजिल हुई थी उसका सबब। ये दो वाक़ियात को आज हम फोकस करेंगे इंशाल्लाह। जैसे कि आप सब जानते हैं जिन्होंने भी तफसीर पढ़ी होगी, और जिन्होंने नहीं पढ़ी है तो वो अब जान लें समझें कि शुरू से लेकर आखिर तक जब अल्लाह के रसूल हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए तो मदीना आने के बाद मुनाफिकीन का ये मामला था कि वो चाहते थे कि किसी तरह से इस्लाम को ख़त्म कर दें और अल्लाह के रसूल वापस यहाँ से चले जाएँ मदीना से, क्योंकि वो वहाँ पर अपना होल्ड चाहते थे। अभी तक 5 हिजरी से पहले तक जितनी जंगें हुई थीं उसमें उनको जान जाने का ख़तरा था, लिहाजा उसमें मुनाफिकीन शरीक नहीं हुए थे। ऐन वक्त पर आकर वो बहाने बना देते थे कि हमको जंग में शरीक नहीं होना है। लेकिन 5 हिजरी में ऐसा हुआ कि एक छोटी सी जंग पेश आई और उस जंग में मालूम था कि इसमें जंग की नौबत नहीं आएगी, बल्कि छोटे मोटे लोग हैं वो ऐसे ही हैबत से ही मुसलमानों की हैबत से अपने हथियार डाल देंगे। तो उस जंग में या उस गजवे में मुनाफिकीन बहुत ज़्यादा शामिल हुए, क्योंकि उनको मालूम था कि एक तो नज़दीक का मामला था कि बिल्कुल चंद किलोमीटर के फासले पर गजवा हुआ था वो, दूसरी बात ये थी कि उसमें बाकायदा जंग नहीं होनी थी तलवार से, तो इस वजह से मुनाफिकीन उसमें शामिल हो गए क्योंकि उनको मालूम था कि जान जानी नहीं है लिहाजा शामिल हो जाओ। और अभी तक के जो मदीने की हिस्ट्री हम देखते हैं, मुनाफिकीन का मामला ये था कि वो हमेशा कुफ्फार और मुशरिकीन के साथ रहे, यहूद और नसारा का साथ देते रहे, और मुसलमानों से उन्होंने हमेशा गद्दारी की क्योंकि वो इस्लाम के वफादार नहीं थे, और ज़ुबान से उन्होंने सिर्फ इस्लाम कबूल किया था, एक्चुअली वो मुनाफिक थे। अब एक उनको मौका मिल गया कि वो जानते थे कि अब इस्लाम ख़त्म नहीं हो सकता जंग से, उसको यानी जंगों के ज़रिए से वो उसको ख़त्म नहीं कर सके, यहूद नसारा की वफादारी से भी ख़त्म नहीं कर सके, तो उन्होंने कुछ और तरीके कार अख्तियार करना चाहा ताकि मुसलमानों में आपस में इंतशार फैले, मुसलमान जहनी परेशानी में मुबतला हों, और इस तरह से इस्लाम का जो एक यानी इस्लामी कॉज कहना चाहिए जिसको आप कह लें कि जो मकसद था अल्लाह के रसूल का कि अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का दीन कायम हो, उसको नुकसान पहुंचाना चाहते थे मुनाफिकीन। तो 5 हिजरी में एक वाक़ पेश आया, ज़्यादा जो सही रिवायत लगती है वो यही है कि ये 5 हिजरी में वाक़ पेश आया था। मुरैसी नामी एक कुआं था, वेल, उसके पास ये वाक़ पेश आया। इसको गज़वे बनी मुस्तलक कहते हैं, गज़वे बनी मुस्तलक, मीम स्वात तौ लाम काफ। वहाँ एक चश्मा था उनका बनी मुस्तलक का। तो मुसलमान, कुछ मुसलमान थे जो वहाँ पर गए, और इस सफ़र में मुनाफिकीन की बहुत बड़ी तादाद थी जो कोई और गजवे में नहीं थी। और जैसे कि हम जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि जब भी आप गजवे के लिए निकलते आप कुरआन डालते थे, उसमें जिस जौजे का नाम आता उस जौजा को यानी उस बीवी को आप अपने साथ ले लेते थे। तो इस मौरके में, इस गजवे में आयशा रदी अल्लाह अन्हा का नाम आया, लिहाजा वो अल्लाह के रसूल के साथ गईं। कहा जाता है कि चलते चलते उन्होंने अपनी बहन अस्मा से उनका हार ले लिया पहनने के लिए, यानी हार मांग कर पहन लिया। उनके गले में वो हार था, और हो सकता है वो कमज़ोर हो, उसकी लड़ियाँ वगैरह उसकी टूट जाती हों, और ख़ुद आयशा रदी अल्लाह अन्हा उस वक्त 14 बरस की थी, 14 साल की थी, और ये एज वो होती है जिसमें औरतों को शौक होता है जेवरात का, और ये कोई गलत बात नहीं है। सफ़र में अल्लाह के रसूल के साथ वो भी ऊँट पर सवार थी, और जैसे ऊँट पर एक एक्चुअली कजावा कह लें उसको, या मुहमिल कह लें आप, हौदज भी कह सकती हैं आप उसको, एक छोटा सा मतलब एक टेम्प्रेरी रूम होता है वो, जो चारों तरफ से घिरा हुआ होता है और 4 लकड़ियों पर उस मुश्तमिल होता है वो बना हुआ, जो ऊँट पर रख दिया जाता है, जिसमें ख़वातीन बैठा करती थी। और चूंकि अजवाज मुतहरात को स्पेशल हुक्म था पर्दे का, लिहाजा उनके लिए डबल पर्दा था कि वो हिजाब या अबाए में रहना भी उनके लिए काफ़ी नहीं था, बल्कि उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता था कि वो ऊँटों पर जब सवार होती तो हौदज के अंदर बैठा करती थी। तो बहरहाल खुद आयशा रदी अल्लाह अन्हा इस वाक़े को बयान करते हुए कहती हैं कि उस वक्त चूँकि ग़िज़ा इतनी ज़्यादा नहीं मिलती थी, मुकम्मल ग़िज़ा भी नहीं मिलती थी, और कम सिनी की एज थी यानी बहुत कम उम्र थी वो, तो अच्छी ग़िज़ा ना मिलने की वजह से भी और उम्र कम होने की वजह से भी वो बहुत ही हल्की फुल्की दुबली पतली थी। तो जो ऊँट चलाने वाले ये सारबान होते हैं जो हौदज को उठाकर रखते हैं ऊँट पर, तो उनको महसूस भी नहीं होता था कि इस सवारी में या इस हौदज के अंदर कोई खातून बैठी है या नहीं बैठी है। तो बहरहाल इस गजबे में एक और भी वाक़ पेश आ गया जिसमें जो अब्दुल्ला बिन उबई था मुनाफिकीन का सरदार, उसने औस और खजरज को या अंसार और महाजरीन को लड़ाने की कोशिश की आपस में, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐन वक्त में बीच बचाव करा दिया, लिहाजा वो आपस में लड़ते लड़ते रह गए। अब ऐसा हुआ कि आयशा रदी अल्लाह अन्हा खुद ये वाक़ बयान करते हुए कहती हैं कि जब हम ये काफिला निकलने लगा वहाँ से, और ये रात का पिछला पहर था, वो रवानगी को तैयार थे। आयशा रदी अल्लाह कुछ कज़ाए हाजत के लिए काफिले से ज़रा दूर निकल आई, चली गई, यानी जो भी उनको ज़रूरत थी, वॉशरूम जाना होगा क्योंकि सफ़र में वॉशरूम तो होते नहीं है, तो दूर इलाके में चली गई ताकि किसी की नज़र ना पड़े। तो एक तो उनकी एज कम थी, फिर हम आयशा रदी अल्लाह के बारे में जानते हैं कि वो हार उन्होंने लिया था, तो अब जाहिर सी बात है उसकी निगरानी भी करनी थी। कहा जाता है कि उनका हार गिर गया, यानी उन्होंने देखा तो हार नहीं था। वो कहती हैं कि जब मैंने इत्तेफाक से गले पर हाथ डाला तो देखा वहाँ हार नहीं था। एक तो ना तजुर्बेकारी, सफ़र और किसी और का हार, तो घबरा गई, उसको वहीं ढूंढने लगी। और ये बात उन्होंने इधर काफिले वालों को नहीं बताई। ढूंढने में देर हो गई, और जब तक कि वो जो सारबान थे, जो ऊंट पर हौदज उठाकर रखा करते थे, ठीक है, उन लोगों ने क्या किया कि हौदज उठाकर ऊंट पर रख दिया, और उन्हें पता भी नहीं चला कि इसमें कोई है या नहीं है। और ऊंट वहाँ से निकल पड़ा, यानी पूरा काफिला ये वहाँ से रवाना हो गया, जो कारवान था वहाँ से निकल पड़ा। और ऊंट खाली चल रहा था, अंदर कोई खातून थी नहीं। उन लोगों को एहसास भी नहीं हुआ कि इसके अंदर आयशा रदी अल्लाह अन्हा नहीं है। जब काफिला आगे निकल चुका तो आयशा रदी अल्लाह अन्हा वापस पहुँची अपना हार ढूंढ कर। तो जब देखा कि वहाँ पर कोई नहीं है तो वहीं पर बैठ गई। कह रहे थे कि एक कुछ कुछ किसी चीज़ से टेक लगाकर बैठ गई और सोचने लगी कि जब उनको वहाँ जाकर पता चलेगा कि उसमें मैं नहीं थी तो वो मुझे खुद ही वापस लेने के लिए आएंगे। कहा जाता है कि सफवान बिन मुअत्तिल रदी अल्लाह अन्हु एक सहाबी थे, और ये एक्चुअली हर सफ़र में या गज़वे में ये इस तरह से किया करते थे कि लश्कर के पीछे पीछे रहते थे, ताकि अगर लश्कर से कोई चीज़ छूट गई हो, लोगों ने वहाँ कोई चीज़ें भूल गई हो, तो ये पीछे से उठाते हुए वापस ले आए। जब ये पीछे से आए तो देखा कि कोई वहाँ पर बैठा हुआ है। दूर से उनको कुछ चीज़ नज़र आई, जब करीब पहुँचे तो पता चला कि ये आयशा रदी अल्लाह अन्हा, क्योंकि वो आयशा रदी अल्लाह अन्हा को पहले देख चुके थे, पर्दे की आयतें नाजिल होने से पहले। तो उन्होंने पहचान लिया, और देखते ही उन्होंने इन्ना लिल्लाह पढ़ा। तो आवाज़ सुनकर आयशा रदी अल्लाह अन्हा चौंक पड़ी, और अपना जो दुपट्टा था उसको दुरुस्त कर लिया, यानी चेहरे से हो सकता है हट गया हो। सफ़वान रदी अल्लाह अन्हा ने अपना ऊँट लाया, उसको बिठाया, और उस पर आयशा रदी अल्लाह अन्हा को बिठा कर उसी वक्त वो निकल पड़े। सफ़वान रदी अल्लाह अन्हा के हाथ में ऊँट की मुहार थी, यानी जो रस्सी थी, और आयशा रदी अल्लाह अन्हा ऊँट पर सवार थी। और ये लोग बस सिर्फ इन्हीं 2-4 घंटे के फ़र्क से दिन के वक्त ही, ऐन दोपहर के वक्त, जिस चूँकि अरब ममालिक में 10 बजे ही बहुत सख्त तेज़ धूप हो जाती है, तो ये लोग धूप के वक्त पहुँच गए। जब काफिला आगे जाकर वहाँ पड़ाव कर चुका था थोड़े आगे फासले पर, तो ये लोग उसी वक्त वहाँ पहुँच गए। और आयशा रदी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि इसके अलावा कोई एक भी बात नहीं हुई, यानी उन्होंने इन्ना लिल्लाही व इन्ना पढ़ा था सफ़वान बिन मुअत्तिल ने, और ऊँट लाकर बिठा दिया और मैं उस पर सवार हो गई। इसके अलावा कोई बात दरमियान में नहीं हुई। तो बहरहाल ऐसा हो जाता है अक्सर, ये तो एक मामूली वाक़िया था। और ये ऐसे वाक़िया अक्सर, यानी आपने देखा होगा कि बनू इसराइल ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाया था। इसी तरह से जो और दूसरे मज़ाहिब हैं, उसमें जैसे हिंदुओं की किताबों में अगर आप देख लें तो उसमें भी सीता पर इल्ज़ाम लगाया गया। तो बहरहाल उसी तरह का समझिए एक वाक़या पेश आया। अब्दुल्ला बिन उबई, जो कि अभी थोड़ी देर, कुछ घंटे पहले, यानी एक दिन पहले, उसने मुसलमानों को आपस में लड़वाना चाहा था, तो और वो लड़ाई नहीं हुई, बल्कि उल्टा उसी को जलील होना पड़ा, क्योंकि जो उस वक्त एक सहाबी थे, अरकम बिन जैद या जैद बिन अरकम, तो उन्होंने आकर कह दिया था अल्लाह के रसूल से कि ये अब्दुल्ला बिन उबई ने कहा है कि यहाँ से जाने के बाद, यानी मदीना पहुँचने पर, इज्जत वाला जिल्लत वाले को निकाल देगा। तो अब्दुल्ला बिन उबई की ये बात वो सहाबी ने, जो छोटे से लड़के थे, यंग लड़के थे, 11-12 साल के, उन्होंने अल्लाह के रसूल को सुना दी। जब अब्दुल्ला बिन उबई को बुलाकर पूछा गया तो अब्दुल्ला बिन उबई ने कहा था कि मैंने ये बात नहीं कही, कसम खाकर कही थी, लेकिन तभी आयत नाजिल हो गई और अल्लाह के रसूल को पता चल गया कि अब्दुल्ला बिन उबई ने ये बात कही थी। तो वो जलील हो गया, वहाँ पर उसकी बेइज्जती हुई, जबकि वो अपने आप को बड़ा सरदार कहता था। तो बहरहाल جب اس نے دیکھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ آ رہی ہیں اور صفوان بن معطل اونٹ کی مہار تھامے ہوئے ہیں، اس کو ایک اور سمجھے پلاننگ اس کو کرنے میں آسانی ہو گئی، اور اس نے اسی وقت اپنے ذہن میں پلان ترتیب دے دیا کہ یہ واقعہ بڑا اچھا ہے اور یہاں پر یہ اللہ کے رسول کی بیوی پر الزام لگا دیں تاکہ پھر ان مسلمانوں میں انتشار پھیلے. تو نو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اور یہ عبداللہ بن ابی اس کو اپنے کیے کو جو اس نے کیا اس کے انجام کو تو وہ پہنچ ہی چکا ہوگا. بہرحال اس نے کیا کیا کہ یہ بات مشہور کر دی دیکھ کر کہ کہنے لگا کہ اللہ کی قسم رسول کی بیوی پاک نہیں رہی، نعوذ باللہ. اس طرح سے اس نے جملہ کہا. اب جو لوگ بھی اس کی یہ بات سنتے ان لوگوں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ سبحان اللہ، حاذا بہتان عظیم. اسپیشلی ہم کو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ ملتا ہے کہ انہوں نے جب ان کو یہ بات سن انہوں نے یہ بات سنی اور جو بھی نیک اور پاک باز پاک دل مسلمان تھے انہوں نے جب یہ بات سنی، الزام سنا، تو انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ حاذا بہتان عظیم. یہ قرآن ہی کی آیت ہے، ایکچولی اللہ تعالیٰ نے ان کے جملے کو کوٹ کر دیا وہاں پر قرآن میں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ سبحان تعالیٰ پاک ہے، یہ تو ایک بہتان عظیم ہے. اسی کو عفق کہتے ہیں. عفق کا مطلب ہوتا ہے گردن کو، ویسے کہا جاتا ہے عفق پیچھے کے حصے کو کہا جاتا ہے ایکچولی دیکھا جائے تو، کہ واقعے کو توڑ مروڑ کر اس طرح سے کچھ کا کچھ شکل بنا کر پیش کر دینا، یعنی اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا الزام لگانا کہ تصویر کچھ اور تھی اور اس کو کچھ اور کر کے دکھا دیا گیا. تو اتنا بڑا الزام تھا یہ کہ واقعہ کچھ اور تھا، اس کو بالکل ہی الٹ پلٹ دیا گیا کہ چہرے سے پیچھے موڑ دیا گیا، اتنا بڑا اس کو اس کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا. تو بہرحال جو بھی لوگ سنتے وہ کہتے کہ یہ تو ایک بہتان عظیم ہے. کہا جاتا ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے ان کی بیوی نے کہا کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، نہیں کس طرح سے جو باتیں ہو رہی ہیں. جواب میں ابو ایوب نے کہا کہ اے ام ایوب، اگر تم سے یہ کوئی کہتا تو کیا تم مان لیتی؟ تو بولی کہ استغفر اللہ، کسی شریف کا بھی یہ کردار ہو سکتا ہے؟ تو ابو ایوب انصاری نے کہا کہ تو عائشہ تو تم سے کہیں زیادہ شریف ہیں، اور کیا ان سے ایسا ہو سکتا ہے؟ ابو ایوب انصاری نے کہا کہ اور میں صفوان کو جانتا ہوں، صفوان مجھ سے بہتر مسلمان ہیں. تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ جو نیک لوگ تھے انہوں نے کیا کہا، فوراً ہی کہہ دے کہ یہ بہتان عظیم ہیں. اور یہ واقعہ کہا جاتا ہے کہ جب مدینہ پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ واقعہ سب طرف پھیلا دیا گیا، منافقین نے یہ واقعہ سب طرف پھیلا دیا اور عائشہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگا دیا. یہ بات اللہ کے رسول تک پہنچی، اللہ کے رسول سخت پریشان ہو گئے. خود عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رغبت، وہ الفت جو وہ ہوا کرتی تھی، وہ میں نے محسوس کیا کہ وہ اللہ کے رسول کی رغبت اب باقی نہیں ہے، اور وہ بیمار بھی ہو گئی تھی وہاں سے واپسی پر. اس واقعے میں تین لوگ جو صحیح مسلمان تھے وہ بھی اس میں اس کے پھیر میں آ گئے سمجھے، یعنی تھے وہ سچے مسلمان، وہ منافقین میں سے نہیں تھے. لیکن وہی والی بات نہیں کہ شیطان کس طرح سے انسان پر حملہور ہوتا ہے کہ وہ لوگ بھی اس الزام میں شامل ہو گئے، یعنی ان کی زبان سے بھی اس الزام کے بارے میں باتیں نکل گئیں، اور وہ تھے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، حمنہ بنت جحش اور مستح بن اساسہ. حالانکہ جو مستح بن اساسہ تھے یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے رشتہ داروں میں سے تھے اور غریب خاندان سے تھے، لہٰذا ابو بکر صدیق ہی ان کی کفالت کرتے تھے، یعنی خود ان کا خرچ برداشت کرتے تھے. حمنہ بنت جحش زینب بنت جحش کی بہن تھی، جو کہ ام المومنین زینب بنت جحش تھی، آپ کی پھوپھی کی بیٹی، انہی کی بہن حمنہ بنت جحش تھی. اور حسان بن ثابت جن کو شاعر اسلام کہا گیا، جنہوں نے اشعار کی صورت میں کفار کو جواب دیا تھا. تو بہرحال یہ تین لوگ اس میں شامل ہو گئے. عائشہ رضی اللہ عنہ خود اپنا یہ واقعہ اپنی زبانی بیان کرتی ہیں کہ جب یہ واقعہ پیش آیا اور جب میں اس غزوے سے واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ التفات، وہ محبت، وہ آپ کی جو اخلاقی عادت تھی کہ آپ بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، تو وہ میں نے نہیں پائی اور میں بیمار بھی ہو گئی، لہٰذا میں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ مجھے اپنے والدین کے گھر جانے کی اجازت دی جائے. اللہ کے رسول نے اجازت دے دی. وہ کہتے تھے جب میں اپنے والدین کے گھر گئی تو ان کو بھی تھوڑا سا پریشان دیکھا. ایک دن میں جب رفع حاجت کے لیے، یعنی
उस जमाने में वॉशरूम नहीं होते थे घर में, टॉयलेट, इसके लिए वो लोग मैदान में जाया करते थे। तो कहने लगी जो दिन में उम्मे मिस्ताह के साथ, जो मिस्ताह बिन उसासा थे उनकी वालदा के साथ में एक दिन रफ़े हाजत के लिए गई। वहाँ से वापसी पर वो कहती हैं कि एक जगह उम्मे मिस्ताह को ठोकर लगी, तो उन्होंने कहा कि बुरा हो मिस्ताह का, यानी कुछ ऐसा ऐसा जुमला, मैंने कुछ ऐसा बद्दुआ ये जुमला खुद अपने बेटे के लिए कहा। तो कहने लगे आंसू रजी ने कहते कि मैंने उनको सरजनिश की कि ये आप अपने बेटे को क्यों बद्दुआ दे रही हैं इस तरह से। तो उम्मे मिस्ताह कहने लगी कि तुम नहीं जानती कि उसने मिस्ताह ने क्या किया है। तो मैंने पूछा कि क्या किया है, तो वो कहने लगी क्या तुम नहीं जानती कि तुम पर क्या बात हो रही, तुम पर क्या बातें हो रही हैं। तो आंसू रजी ने कहा कि नहीं मैं नहीं जानती। तो कहने लगी कि रास्ते ही में उम्मे मिस्ताह ने उनको तमाम वाकयात बता दिए। ऐसे रदीवलन कहती हैं कि जब मैंने ये बात सुनी तो ऐसे लगता था गोया कि कांटे के बदन में लहू नहीं, और मैं इतना रोने लगी, इतना रोने लगी कि ऐसे लगता था कि जैसे मेरे रोने की वजह से मेरी जान चली जाएगी। वो कहती थी मेरा दुपट्टा भीग गया, मैं वापस आई और लेट गई। और इतने दिन तक कि उनको कुछ पता नहीं था ऐसे रदीवलन को, लेकिन जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर आए और ये इन्हें ऐसा हुआ कि उससे पहले अल्लाह के रसूल ने मस्जिद में उसका जिक्र किया, तो उससे और मस्जिद मसला पैदा हो गया। औस और खजरज जो दो कबीले थे उनकी आपस में लड़ाई होते होते रह गई, अल्लाह के रसूल ने बीच बचाव करा दिया। बहरहाल कि जब वो आयशा रज़ी अल्लाह के पास आए और आयशा रज़ी अल्लाह से पूछा कि आयशा अगर तुमसे कुछ कसूर सरजद हुआ है तो इकरार कर लो और तौबा कर लो, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। तो आयशा रज़ी अल्लाह कहने लगी कि वल्लाही जो बात आपके दिल में बैठ चुकी है, अगर मैं उसका इकरार भी कर लूँ जबकि मैंने कुछ किया नहीं है, तो जो बात आपके दिल में है उसे तो कोई नहीं निकाल सकता। और ख़ुद आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि जिस वक्त अल्लाह के रसूल ने जुमला कहा उस वक्त मेरी आँखों से आंसू खुश्क हो गए और मुझे वो बात याद आने लगी जो उन्हीं के जुमले है कि वो अभी बिस्तर पर ही थी, रो रही थी, आँखों से आंसू जारी थे, वालिदैन तीमारदारी कर रहे थे। जब अल्लाह के रसूल घर में दाखिल हुए तो करीब जाकर बैठ गए और कहा कि ए आयशा अगर तुमसे कुछ कसूर सरजद हुआ है तो तौबा करो, अल्लाह कबूल करेगा, वरना अल्लाह खुद तुम्हारी तहारत की गवाही देगा पाकी की। आयशा रज़ी अल्लाह कहते कि मैंने वालिदैन की तरफ देखा लेकिन उन्होंने भी मेरी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर आयशा रज़ी अल्लाह कहती कि मेरे आँखों के आंसू खुश्क हो गए, एक कतरा भी आँखों में ना था, और दिल में अपनी बरात के यकीन के बिना पर इत्मीनान महसूस किया। फिर वो गोया हुई हैं, कहने लगी अगर मैं इकरार कर लूँ, हालांकि अल्लाह खूब जानता है कि मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ, तो इस इल्ज़ाम के सही होने में किस को शक रह जाएगा। अगर इनकार करूँ तो लोग कब कब ये बात कबूल करेंगे। मेरा हाल इस वक्त यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद, यानी वो कहती हैं कि सोचने पर भी मुझे याकूब अलैहिस्सलाम का नाम याद नहीं आ रहा था, लिहाजा मैंने यूसुफ़ के वालिद कहा। तो मेरा हाल इस वक्त यूसुफ के वालिद का सा है जिन्होंने कहा था तसब्रुन जमीलुन वल्लाहुल मुस्तआन, कि तसब्र ही बेहतर है और अल्लाह ताला ही मदद करने वाला है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मुनाफिकीन चाहते थे कि इस वाक़े का फ़ायदा उठाकर वो मुसलमानों में आपस में इंतशार फैलाएं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दें, और सिद्दीक जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु थे उनके नाम की अहानत हो या बदनामी हो और अल्लाह के रसूल के ख़ानदान में तफरीक हो जाए, और जो आपस के ताल्लुकात थे इस्लाम में या इत्तेहाद जो था इज्तिमाई क़ुव्वत जो थी उसमें दरारें डालें। और इसी वाक़े में क्योंकि अल्लाह के रसूल ने सबसे पूछा था, ज़ैनब बिन्त जहश से पूछा गया कि अच्छा आपने आयशा रज़ी अल्लाह को कैसे पाया, तो उन्होंने अपने कानों को हाथ लगाया और कहने लगी कि वल्लाही मैंने उनमें सिवाय भलाई के कुछ और नहीं देखा। आप देखें कि इन्हें ये होता है सुभान अल्लाह तक़वा कि ज़ैनब बिन्त, खुद आयशा रज़ी अल्लाह कहती थी मुझसे सिर्फ मुकाबला ज़ैनब बिन्त जहश ही करती थी, क्योंकि वो ख़ानदान में अल्लाह के रसूल के ख़ानदान की थी, खूबसूरत थी, शायरा थी। लेकिन जब बात आई और जब हक बात की, मुझे बात है कि आप देखिए कि ज़ैनब बिन्त जहश का किरदार माशाल्लाह कितना आला अखलाक और किरदार की मालिक थी। ये सब वो ख़वातीन थी जो अल्लाह के रसूल के साथ तरबियत में रह चुकी थी, भला ये कैसे उनकी ज़बान से कुछ इस तरह से निकल सकता था। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने आयशा रज़ी अल्लाह की पाकबाज़ी की गवाही दी और तमाम अज़वाज ने गवाही दी। जब आयशा रज़ी अल्लाह की खादिमा बरीरा से पूछा गया तो बरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि मैं तो देखती हूँ कि वो तो पहले समझी नहीं इस बात को, जब उनसे पूछा गया कि तुमने आयशा रज़ी अल्लाह में कुछ देखे हैं कि उसकी बात करने लगी कि नहीं, मैं तो देखती हूँ कि वो इतनी अल्लाह की हैं कि आटा गूंद के रखती हैं और बेफिक्री से सो जाती हैं और बकरी आकर आटा खा जाती है। जब उनसे कहा गया कि नहीं बल्कि ये ऐसा ऐसा मामला है और उसमें, तो कहती हैं कि वल्लाह ही उनमें सिवाय खैर के कुछ नहीं है, मैंने कभी उनमें ऐसी कोई बात नहीं देखी। आप देखिए कि घर के खादिमा, मैं किसी के भी बारे में अगर गवाही ली जाए तो घर के खादिमा से बढ़कर कौन गवाही दे सकता है कि किसका अखलाक कैसा है। और उस जमाने में खादिमा ऐसा नहीं कि 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए आती थी और चली जाती थी, आज जैसा हमारे दौर में है। उस जमाने में जो लौंडियाँ होती थी वो तो 24 घंटे साथ में रहती थी। तो ये आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की जो लौंडी थी, कनीज थी, ये 24 घंटे उनके साथ थी। तो उन्होंने भी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के फेवर में या उनकी पाकबाजी में, पाकबाजी के हक में बयान दिया। तो बहरहाल जैनब बिन्त जहाश ने तो आप देखें कि कहा कि वो नहायत ही पाकबाज हैं, हमने उनमें कोई खराबी नहीं देखी। लेकिन उनकी बहन, अपनी बहन की मोहब्बत में आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर इल्ज़ाम लगा बैठी, थी उनकी ज़ुबान से भी ये बातें निकल गईं। तो बहरहाल ये 3 लोग थे जिन्होंने इसमें उनकी ज़ुबान से ऐसी बातें निकली, लिहाजा ये 3 लोगों को हस्सान बिन साबित, ज़ैनब बिन्त जहश और मिफ्ताह बिन उसासा, इन 3 लोगों को कोड़े लगाए गए। क्योंकि भोली भाली पाक दामन मोमिन औरतों पर तोहमत लगाना ये गुनाह कबीरा है और दुनिया में इसकी सज़ा कोड़े है और आखिरत में जब तक तौबा ना किए जाए माफी नहीं है। तो लिहाजा इनको दुनिया में जो सजा थी कोड़े लगाने की, कोड़े लगाए गए और मुनाफिकीन को उनके हाल पर छोड़ दिया गया कि अल्लाह ही उनसे बदला लेगा। बहरहाल ये वाक़ इस कहलाता है, जब आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि जब मैंने कहा कि मेरा हाल तो याकूब अलैहिस्सलाम की जैसे नहीं, यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद की जैसा है और मैं तो सब्र ही करूँगी, तो उसी दौरान वो कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर नीचा किया, आपकी पेशानी पर कतरे नमोदार हुए और वही की कैफियत आप पर तारी हो गई। उसी वक्त वही नाजिल हुई और सूरह नूर का पूरा 1 रुकू तकरीबन नाजिल हुआ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की बरात में। इन्नल लज़ीना जाऊ बिल इश्क़ उसबतुम मिनकुम ला तहसबूहु शर्रल लकुम बल हुवा खैरुल लकुम। सुभान अल्लाह, देखें कि अल्लाह तआला क्या फरमा रहा है कि बेशक जो लोग ये बहतान अजीम लाए हैं घर कर, वो तुम ही में का एक टोला है, उन्हें एक कुछ ग्रोह है और वो समझते थे कि तुम्हारे हक में शर है, तो तुम इसको शर ना समझो बल्कि ये तो तुम्हारे हक में खैर है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी वजह से बहुत सारी बातें सीखने को मिली कि जिन लोगों ने ये झूठ बांधा है वो तुम ही में से कुछ लोग हैं, तुम उसको बुरा ना समझो बल्कि उसमें तुम्हारी बेहतरी है। यानी इससे फिर मोमिनीन और मुनाफिकीन का फ़र्क समझ में आ गया। हर शख्स को उसके हिस्से के मुताबिक गुनाह मिला, इसमें उसने जितना हाथ डाला उसको उतना बड़ा हिस्सा मिला उसको उतना ही अजाब होगा। जब तुमने ये सुना तो मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों ने अपने भाई बहनों की नुसरत में गुमान क्यों नहीं किया और क्यों ये नहीं कहा कि ये तो बड़ा बहतान है, और क्यों उन इल्ज़ाम लगाने वालों ने 4 गवाह पेश ना किए? जब पेश नहीं किए गवाह तो अल्लाह के नज़दीक वो झूठे ठहरे। तो बहरहाल ये सूरह नूर की आयत नाज़िल हुई, सूरह नूर आयत नंबर 23-24। और 11 से 19 तक है और 23 और 24 आयत में भी है। आज अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग भोली भाली पागदामन भी औरतों पर तोहमत लगाते हैं वो दुनिया और आखिरत दोनों में मलून होंगे और उनको बड़ा अजाब होगा उस दिन जब खुद उनकी ज़ुबानें और उनके हाथ पांव उनके करतूतों पर गवाही देंगे। तो कहा जाता है कि अब यहाँ तक का तो वाक़ा सही ऑथेंटिक रिवायतों में दर्ज है, सही बुखारी में भी है। अब इसके आगे का जो वाक़ा है कि जब ये आयतें नाज़िल हुई तो उनकी वालदा ने कहा कि उठो बेटी और अपने शौहर का शुक्रिया अदा करो। तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने वो जो निस्वानी गुरूर कहना चाहिए, एक निस्वानी नाज कहना चाहिए, और जो उनको अल्लाह के रसूल से और अल्लाह के रसूल को उनसे जो मोहब्बत थी उस बिना पर वो कहने लगी कि मैं सिर्फ अपने अल्लाह का शुक्रिया अदा करती हूँ, किसी और की ममनून नहीं। उसके बाद उन 3 लोगों पर उनको कोड़े की सज़ा दी गई, जिन्होंने एग्ज़ाम में जो सही मुसलमान थे उस एग्ज़ाम में उनका थोड़ा बहुत हिस्सा था, तो उनको सज़ा देकर उनको इससे पास कर दिया गया। और ये रिवायत तमाम की तमाम बुखारी में है। कहा जाता है कि एक दफ़ा हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हा बाद में आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जब बीमार हुई एक दफ़ा तो उनको कुछ शेर कहे उनकी तारीफ में, हसानुन रजानुन मातजुन्नु बिरई बचिन لطفته غرت انده من الغواصل. ترجمہ ہے کہ پاک دامن ہے، باوقار ہے، مشتبہ نہیں ہے، بھولی بھالی عورتوں کے بدن کا گوشت نہیں کھاتی. یعنی ایکچولی حسان بن ثابت یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی خوبی تھی، اس سے سب معترف تھے کہ وہ کبھی کسی سے غیبت نہیں کرتی تھی. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، دیکھیں کتنی بڑی بات ہے یہ. میں اور آپ سوچیں کہ ہم کتنا بھی بچنا چاہیں اور کتنا بھی اپنے آپ کو ہم اوائڈ کریں، ہم سے کہیں نہ کہیں یہ غلطی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں معاف کرے اور ہمیں اس سے محفوظ رکھے. لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تمام سیرت کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ وہ غیبت نہیں کرتی تھی. اور یہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے شعر میں ان کی تعریف بیان کی. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس شعر سن کر صرف اتنا کہا کہ یہ سچ ہے مگر تم ایسے نہیں ہو. یہ اشارہ دراصل ان کے اس واقعہ تہمت کی طرف تھا، یعنی جو تہمت میں وہ شریک ہو گئے تھے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ. لیکن بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کبھی ان کے اوپر کوئی الزام تراشی نہیں کی. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ حسان بن ثابت اس الزام میں شامل ہو گئے تھے تو انہوں نے اپنا رویہ حسان بن ثابت کے ساتھ برا رکھا ہو. صرف اتنا جملہ کہا کہ تم ایسے نہیں ہو، اس سے ان کے ضرب کا ہم کو پتہ چلتا ہے. تو بہرحال یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی خوبی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات میں سورہ نور میں یہ آیت نازل فرمائی. یہ ایک بہت بڑا آنر ہے سمجھے. اور خود عائشہ رضی اللہ عنہ جب بتاتی ہیں اپنے بارے میں کہ ان کو خاص سے فضیلت حاصل تھی تمام ازواج مطہرات پر، تو اس میں وہ یہ ایک واقعہ بھی بیان کرتی ہیں کہ تمام ازواج پر مجھ کو جو فضیلت تھی اس میں ایک یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میری برات قرآن میں نازل فرمائی اور قیامت تک کے لیے ہم لوگ یہ پڑھتے رہیں گے آیتیں جو عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی اور پاک بازی کی دلیل ہیں. اب اس میں اس سے بڑا آنر کیا ہو سکتا ہے ماشاءاللہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی پاکی کے لیے، ان کی برات کے لیے قرآن میں آیتیں نازل فرما دی. اور ویسے بھی یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ پاک اور پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں اور خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، نبی تھے، سب سے بڑھ کر پاک باز، سب سے زیادہ صادق و امین، اور دنیا میں ہم سب جانتے ہیں کہ آپ سے بڑھ کر انبیاء کرام سبھی بہت زیادہ احترام کے قابل ہیں، اور جتنے بھی انبیاء گزرے وہ سب سے افضل انسان تھے اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہے. لیکن آپ، ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کو فضیلت ملی تمام انبیاء پر، افضل الانبیاء کہا جاتا ہے آپ کو، خاتم النبیین کہا جاتا ہے آپ کو، کیونکہ آپ نے تمام انبیاء کی امامت کروائی، نماز پڑھائی ان کو بیت المقدس میں، اسی بنا پر آپ کو افضل الانبیاء کہا گیا. تو جب آپ اتنے پاک باز تھے تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کیسی بیویاں چنے گا، پاک باز ہی چنے گا نا. تو اس میں عائشہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھی ماشاء اللہ. تو یہ واقعہ عشق تھا جو آپ پر بہتان لگایا گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی برات نازل فرمائی قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے. ایک کسی اسکالر کے بارے میں پڑھ رہے تھے تو یہ پڑھنے کو ملا تھا یہ واقعہ، کہ دو لوگوں کی آپس میں اسی طرح سے کچھ بحث ہو رہی تھی. ایک کوئی کرسچن اسکالر تھے اور کوئی مسلم اسکالر تھے. دونوں کی بات چیت ہو رہی تھی، اسی بات چیت میں سامنے والے نے، جو کرسچن تھے، انہوں نے کہا کہ ہاں تمہاری تو ام المومنین وہ ہیں جن کے اوپر الزام لگا تھا، انہوں نے تنگ دیا کہا یہ بات. تو جو مسلم اسکالر تھے ماشاء اللہ، انہوں نے کہا کہ ہاں دو انتہائی پاک باز، بھولی بھالی، نیک، پاکیزہ اور صدیقہ پر الزام لگا، ایک مریم اور دوسری عائشہ. مریم علیہ السلام کے الزام کی برات اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کے ذریعے کروائی، ایک نیو بورن کے ذریعے سے، اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نازل فرمائی. آپ دیکھیں کتنا اچھا جواب ہے. یہ سامنے والا آپ سے آرگیو کر رہا ہے، آپ پر کچھ طنز کر رہا ہے، اور آپ اس کا جواب اس طرح سے حکمت بھرے انداز میں دیں. یہی حکمت ہمارے اندر آنی چاہیے. جو لوگ بھی دین کی خدمت انجام دینا چاہتے ہیں، دین کی دعوت دینا چاہتے ہیں، تو ان کے اندر یہ حکمت بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ جب ہم بحث پر اتر آتے ہیں تو پھر ہمیں یاد نہیں رہتا کہ ہم سامنے والے کو ایکچولی، پھر کیا ہوتا ہے، ہم اپنی انا پر لے لیتے ہیں بات، اور سامنے والے کو قائل کرنے کے لیے ہم اس کو کسی طرح سے ڈیفیٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کی بڑائی منوانا چاہتے ہیں. تو نہیں، ہمارے اندر حکمت ہونی چاہیے. تو انہوں نے کہا، مسلم اسکالر نے کہا، دنیا کی دو نہایت ہی پاک باز اور بھولی بھالی اور سچی جو دو خواتین تھیں ان پر الزام لگا، ایک کی برات اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کے ذریعے سے کی، نہیں عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، اور ایک کی برات اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتوں سے کی. سبحان اللہ، تو یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے. اور جو دوسرا واقعہ ہم کو ملتا ہے تیمم کا، کہ یہ بھی سفر کا ہی واقعہ ہے، और कहा जाता है कि इस सफर में भी आयशा रजी अल्लाह का हार नहीं था, और हम देखते हैं कि हार का जिक्र बार बार आ रहा है, क्योंकि ख्वातीन को ये सब चीज़ें पसंद होती हैं। इसलिए यहाँ बताना मकसद ये भी है कि अगर ख्वातीन जेवरात पहनती हैं तो उसमें कोई कबाहत नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। अब ये तो ज़ौजे रसूल थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी, इतना भी थी, क्योंकि एक खातून थी तो उनको एक जो नेचुरल शौक होना चाहिए वो शौक था, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। हमारे यहाँ पर क्या समझा जाता है कि जब आप दीन की तरफ आएं, जब आप किसी स्कॉलर की बीवी हों या आप खुद एक दाइयाँ हों दीन की, तो उस सूरत में हमारे यहाँ समझा जाता है कि अब तो इनके पर सब हराम है, ना ये अच्छा लिबास पहन सकती हैं, ना ये अच्छे जेवरात पहन सकती हैं, ना ये लिपस्टिक्स लगा सकती हैं, ना ये अपने आप को मुजयन कर सकती हैं। तो औरत के लिए जीनत अख्तियार करना इसमें कोई मजायका नहीं है, कोई खराबी कोई गुनाह की बात नहीं है, बस ये कि वो हदूद में रह कर करे, कोई इन इसराफ के काम न ले, या अपने आप को बनाने संवारने में इतना वक्त न लगा दे कि उसकी इबादत चली जाए, उसका जो जो अच्छे काम है वो चले जाए, या इसराफ ना हो, पैसा ज़्यादा ज़ाय ना हो, या फिर लोगों को दिखाने के लिए ना करे। अपने शौहर के लिए वो सब संवार सकती है, बल्कि अपने शौहर के लिए ही उसने सजना संवरना चाहिए। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि शादी में जाने के लिए, तकरीब में जाने के लिए तो खूब बना संवरा जाएगा, लेकिन शौहर के लिए तैयार नहीं हुआ जाता। और आजकल की शादियाँ आपको मालूम ही है कि बस अब तो अब कुछ लोग अगर जाना चाहें तो फिर अपना अबाया भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि हर एक के रिश्तेदार अंदर से ले आते हैं। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये बन गया कि अच्छा मैं तो अपनी बहन से मिलने जा रहा था, मैं अपनी अम्मी से मिलने जा रहा था, तो भाई ठीक है आपकी अम्मी और आपकी बहन है शक्ल में, लेकिन दूसरे साल तो आपकी अम्मी और बहन नहीं है ना, तो सब नामहरम है, तो कैसे आप आ सकते हैं? कितनी बेतरदगी होती है, किसी शादी में जाना भी मुहाल हो गया है। तो बहरहाल औरत जीनत अख्तियार कर सकती है, लेकिन हदूद के अंदर रहकर। दूसरा वाक़ा तयम्मुम का है, तो ये भी एक सफ़र का वाक़ा है, इसमें भी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा साथ में थी। और जब ये काफिला वापस आने लगा तो कहा जाता है कि एक ऐसे मुकाम पर वो लोग थे जहाँ पर पानी नहीं था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी गई, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि ठीक है हम यहाँ से पड़ाव यानी उठाते हैं, और काफिला रवाना होता है। अभी काफिला रवाना होने ही वाला था तो पता चला कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का हार गुम हो गया है। अब इस दफ़ा क्योंकि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को पहले वाक़े का तजुर्बा था कि वह अकेली ढूंढने लगी थी हार, लिहाजा इस दफ़ा उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दिया कि मेरा हार गुम हो गया है। अब अल्लाह के रसूल ने तमाम सहाबा से कहलवा भेजा कि जाओ हार ढूंढो। अब आप देखें कि जो रसूल हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके इतने तो उठाने ही पड़ेंगे, इतनी खदमत तो करनी पड़ेगी और इतने नाश तो उठाने पड़ेंगे। जब सहाबा करम हार ढूंढने लगे तो अब अल्लाह के रसूल को तो कहने की किसी की हिम्मत नहीं थी, कह रहे थे कि लोग अबू बकर सिद्दीक के सामने बातें करने लगे कि देखिए आपकी बेटी की वजह से हमारा सफ़र रुक गया है, अब अगर पानी नहीं मिला तो हमारी नमाज कैसे होगी, नमाज भी चली जाएगी, उस तरह की बातें लोग करने लगे अबू बकर सिद्दीक के सामने। तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि मैं अंदर बैठी थी और अल्लाह के रसूल ने हाथ ढूंढने के लिए सब सहाबा से कह दिया और ख़ुद मेरी गोद में सर रख कर आप सो गए और आपको नींद भी लग गई। उतने में अबू बकर सिद्दीक अंदर आए और वो बहुत गुस्से में थे, कहने लगी कि चूँकि अबू बकर सिद्दीक को लोगों ने बातें सुनाई थी लिहाजा वो मुझ पर गुस्सा होने लगे, और चूँकि अल्लाह के रसूल सो रहे थे तो ज़ोर ज़ोर से बातें भी नहीं कर सकते थे ताकि अपनी नींद में खलल ना हो। सहाबा इकराम इस बात का बहुत ख्याल रखते थे, तो कहने लगी कि वो मेरे बाजू में कठोके लगाने लगे, जैसे वो होता है ना ज़ोर से जो हम मरोड़ते हैं, जैसे बच्चों को कभी डांट कर या गुस्से में गाल मरोड़ा जाता है ना या कान मरोड़ा जाता है, तो कहने लगी कि वो मेरे बाजू में कठोके लगाने लगे, बच्चे मरोड़ने लगे। तो कहने लगे कि मैं तकलीफ से दोहरी हुई जा रही थी, मुझे तकलीफ हो रही थी लेकिन मैं जुबान से आवाज़ भी नहीं निकाल सकती थी कि अल्लाह के रसूल के नींद में खलल ना। सुभान अल्लाह, आप देखिए कैसी फरमाबरदार बीवी थी, और क्यों अल्लाह के रसूल को महबूब थी, उनकी अपनी इन्हीं की फरमाबरदारियाँ जो थी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की, अल्लाह के रसूल से उनकी जो मोहब्बत थी, जो फरमाबरदारी थी, जो खदमत गुजारी थी, वो आप देखें। लोग कहते हैं बहाने बनाते हैं कि अच्छा कहाँ लिखा है कि इस्लाम में शौहर की खदमत करना चाहिए, शौहर के काम करना चाहिए और ससुराल वाले की खदमत करना चाहिए, तो चलो ससुराल वाले अभी फ़िलहाल इस तरफ रखते हैं, उस बहस को कभी बाद में डिस्कस करेंगे इस पर, लेकिन आप यहाँ शौहर की खदमत गुजारी। आप देखें कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को कितना ख्याल कि हस्बैंड की नींद में खलल ना हो, लिहाजा वो तकलीफ बर्दाश्त करेंगी लेकिन ज़ुबान से आवाज़ भी नहीं निकालेंगी। अबू बकर सिद्दीक चले गए कचौके लगाकर। उसके बाद वो कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम جاگیر آتروں کیفیت تاری ہو گئی وہی کی، اور وقت نکلا جا رہا تھا، نماز کا وقت ہو رہا تھا، اور اس وقت یہ تیمم والی آیتیں نازل ہوئیں، سورہ نساء آیت نمبر 43، وَإِن كُنتُم مَرَضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا غَفُورًا. کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا حاجت پیش آئے تم کو، یا اس سے فارغ ہوئے ہو، یا عورتوں کو تم نے چھوا ہو اور تم پانی نہیں پاتے، تو پاک مٹی کا قصد کرو اور اسے اپنے منہ اور ہاتھ پر پھیر لو، اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. کہہ رہے تھے کہ وہی لوگ جو ابھی باتیں سنا رہے تھے، وہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، اس میں اسید بن حضیر کا بھی ہمیں نام ملتا ہے، یہ بہت مشہور صحابی ہیں. تو وہ خوش خوش اللہ کے رسول کے پاس آئے. تھوڑی دیر پہلے انہوں نے ہی کہا تھا کہ دیکھیں اب ہماری نماز کیسے ہوگی، اور اب آ کر کہہ رہے کہ اے ابو بکر صدیق کے گھر والوں، یہ ہم پر تمہاری پہلی عنایت نہیں ہے، بلکہ تمہاری وجہ سے ہمیں بہت ساری فیسلٹیز مل چکی ہیں. یعنی کئی آیتیں ابو بکر صدیق اور ان کے گھر والوں کی وجہ سے نازل ہیں قرآن میں. سبحان اللہ، کتنا بڑا آنر ہے یہ ابو بکر صدیق کے لیے اور ان کے خاندان کے لیے. تو لوگ کہنے لگے کہ اے ابو بکر صدیق، یہ تمہاری ہم پر پہلی عنایت نہیں ہے، بلکہ تمہاری وجہ سے ہم پر پہلے بھی بہت ساری عنایتیں ہو چکی ہیں، یہ قرآن میں تمہاری وجہ سے آیتیں نازل ہوئی ہیں. اے صدیق کے گھر والوں، اسلام میں تمہاری پہلی برکت نہیں. سبحان اللہ، اسے ہی بخاری میں یہ واقعہ درج ہے. تو جو ابھی ابھی اپنی بیٹی کو باتیں سنا کر گئے تھے یا ان کو کچھوکے لگائے تھے ابو بکر صدیق نے، وہ بھی خوش ہو گئے اور خوشی سے کہا کہ یہ جو واقعہ ہے یہ مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ نہیں لکھا کہ صحیح ہے یا حسن ہے یا کس درجے پر پہنچتا، لیکن اس میں یہ واقعہ درج ہے. تو ابو بکر صدیق خوشی خوشی آیا اور کہنے لگے کہ اے بیٹی، مجھے معلوم نہ تھا کہ تو اس قدر مبارک ہے، تیرے ذریعے سے اللہ نے مسلمانوں کو کتنی آسانی بخشی. تو بہرحال اس کے بعد یہ قافلہ روانگی کے لیے جب اٹھایا گیا، یعنی ان لوگوں نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، اور جب یہ قافلہ نکلنے لگا وہاں سے، تو جب یہ قافلہ اٹھا تو جس اونٹ پر عائشہ رضی اللہ عنہا سوار تھی، اسی اونٹ کے نیچے سے وہ ہار پڑا ہوا مل گیا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. جو اوپر کی ہے سب سے لاسٹ والے روایت صحیح بخاری کی ہے. جو بیس والا واقعہ تھا وہ بکر صدیق کا جو جملہ تھا وہ مسند امام احمد بن حنبل میں یہ واقعہ درج ہے. تو بہرحال آپ دیکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کیا کرنا مقصود تھا، کہ اسی سفر کے ذریعے سے اسی ہار کے گم ہونے کے سبب میں اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیتیں نازل فرمائیں. اگر یہ واقعہ سبب نہ بنتا تو کچھ اور بن جاتا، یہ تو اللہ کی قدرت ہے، لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے کو سبیل بنا دیا تیمم کی آیتیں نازل کرنے کا. یہ کتنا بڑا احسان ہے آج امت مسلمہ پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی آسانی کر دی، کہ اگر ہمیں پانی نہیں ملے کہیں، چاہے وضو ہو نہ ہو، چاہے اگر جنابت کا غسل بھی کرنا ہو، تب بھی غسل بھی تیمم سے ہو جائے گا اگر پانی نہیں ہے یا بیمار ہے، اور اگر سفر میں ہے تو اس وقت تیمم کرنا پانی نہیں ہے تو یہ وضو کے قائم مقام ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی آسانیاں فراہم کی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ صحابیات کو، صحابہ کو ہمارے لیے مسئلے راہ بنایا، ان کی سیرت کو ہمارے لیے آسان کر دیا، تاکہ ہم اپنی زندگی کو انہی کے واقعات کی روشنی میں گزار سکیں اور ہم بھی کامیاب ہو سکیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سیرت کے ان واقعات سے ہمیں سیکھنے والا بنائے اور اپنی زندگیوں میں سے داخل کرنے والا بنائے. جیسے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے واقعے سے ہم کو سیکھنے کو ملا کہ جب بھی ہمیں کسی کے بارے میں پتہ چلتا ہے، کسی بھولی بھالی پاک دامن عورت کے بارے میں پتہ چلتا ہے اور کوئی ان پر الزام لگا رہا ہو، تو ہمیں فوراً کہنا چاہیے کہ حاضر اس کو مبین، کیونکہ جب تک ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں ہم کسی پر کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، یقین نہیں کر سکتے. کیونکہ کہا جا اسلام میں یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ جب اگر تم کسی کو غلط کام کرتے دیکھو تو چار گواہ پیش کرو لائیو، کہ تم نے وہ غلط کام ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اگر تم لائیو چار گواہ نہیں پیش کر سکتے تو مطلب تم اپنے الزام میں جھوٹے ہیں، تو الٹا تم ہی کو کوڑوں کی سزا ملے گی. تو اگر ہم نے کسی نے کوئی برائی دیکھی بھی ہے تو بہرحال اس کو وہیں دفن کر دیں، دفنا دیں اس کو، مٹی ڈال دیں اس کے اوپر، کیونکہ برائی کی جتنی تشہیر کی جائے گی برائی اتنی ہی پھیلے گی، اور برائی کو جتنا دبایا جائے گا اتنی ہی برائی پنپنے نہیں پائے گی انشاءاللہ. آج آپ ہمارا میڈیا دیکھیں نا، کہ میڈیا میں ایسے واقعات کو اتنا نمک مرچ لگا کر پیش کیا جاتا ہے، اور انصاف کے نام پر یا मीडिया की आज़ादी के नाम पर ऐसे वाक़ को स्पेशली जो ये जो केसेस होते हैं जिना के और इस तरह के, तो उसको बहुत ज़्यादा उछाल उछाल कर दिखाया जाता है। उसकी वजह से जो जिन लोगों को नहीं मालूम आता कुछ, उनको भी वो मालूम होती है, और फिर ऐसी चीज़ों को देखकर लोगों के अंदर और बुराई करने के जज्बात उभरते हैं। तो पहली बात तो किसी स्कैंडल्स में हमको इन्वॉल्व नहीं होना है। अगर स्कैंडल्स का हमें कुछ पता चलता है तो अपने कानों को हाथ लगा लेना है और आंखें बंद कर लेनी है, और ऐसी बातों को ना कहीं फैमिली गैदरिंग में डिस्कस करना है, ना किसी और मजलिस में डिस्कस करना है। ऐसी बातों को हम बिल्कुल हवा ना दें और अपनी आंखें और कान बंद कर लें और अपना हिस्सा उसमें ना डालें। अल्लाह ना करे कि ऐसी बातों की वजह से आखिरत में हमारे लिए कोई सज़ा ना अल्लाह ताला महफूज कर दे, अल्लाह ताला हमको महफूज रखे। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अच्छी बातों को डिस्कस करने वाले बने, ना कि बुरी बातों को, और स्कैंडल्स तो हमारी ज़ुबान पर आने ही नहीं चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। आमीन। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।